ओम शांति, ओम शांति। बाबा क्यों आए हैं? ये प्रश्न वास्तव में हर मुरली में पूछ सकते हैं, क्योंकि बाबा खुद ही बताते हैं मैं क्यों आया हूं। हम आत्माएं तो नहीं जानती है, लेकिन बाबा ही बताते मैं क्यों आया हूं। बाबा कहते हैं, इस समय सब मेरे बच्चे कंगाल हो गए हैं, सब बच्चे मेरे मोहताज हो गए हैं। भारत देश जो इतना ऊंचा था, वो कितना नीचे गिर चुका है। तो केवल धन में ही गिरे नहीं है, लेकिन चरित्र में भी गिरे हैं। तो चरित्रहीन भी बन गए हैं। जो संस्कार देवताओं के हैं, वो सब लुप्त हो गए हैं। तो मैं क्यों आया हूं, वो सब वापस देने। पर कैसे लेंगे? ऐसे नहीं ऐसे हाथ में दे देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं, उसके लिए वो धन वापस लेने के लिए, जो बाबा ने कल पहले दिया था, वो वापस लेने के लिए इस समय ज्ञान रत्न का धन इकट्ठा करना है। वो धन इकट्ठा करने से नहीं चलेगा सतयुग में, लेकिन जितने ज्ञान रत्न का धन इकट्ठा करेंगे, उतना माला माल हो जाएंगे, उतना ही वो धन वहां काम आएगा। ये धन चाहे कितना भी कमा लो, ये मिट्टी में मिल जाना है। इससे और ही पाप आत्मा बनते जा रहे हैं, है ना? आज धन ज्यादा भी मनुष्य को पाप आत्मा और बनाता जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते, इस समय तुम ज्ञान रत्न इकट्ठे करते हो, तो ज्ञान रत्नों की कमाई है। फिर और किस किस से कमाई करते हैं? पुण्य कर्मों से कमाई करते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों से कमाई करते हैं। तो वो भी एक लिस्ट है, हम कैसे कमाई कर रहे हैं, जिसके आधार से ये कमाई हमारे साथ चलेगी। वो पढ़ाई जो पढ़ते हैं, तो भी डिग्री चाहे कितनी भी ले ले, वो केवल एक जन्म के लिए है बस। शरीर छूटा तो सब डिग्रियां खत्म। लेकिन ये जो बाबा हमें डिग्रियां देते हैं संगम पर, वो हमारा आधा कल्प चलती है। तो आज बाबा ने इस समय का भी महत्व बताया है, और इस समय पर जितना चाहो उतना कर सकते हो, जितना चाहो उतनी कमाई कर सकते हो। होता है ना, वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं, अभी समय है कमाई करने का, करो, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। तो बाबा भी कहते, ये अविनाशी कमाई जितनी इस समय कर सकते हो करो, और यही अविनाशी कमाई तुमको आधा कल्प तक तुम्हारे साथ चलेगी। किस रूप में? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। तो आज की मुरली बाबा की इसी पर है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो बेहद का वैराग्य चाहिए। सबसे पहले वैराग्य भी तब आएगा जब देही अभिमानी होंगे। तो बाबा कहते हैं, इस समय जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे, उतने तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, पुण्य जमा होते जाएंगे, अविनाशी कमाई करते जाएंगे। तो इसीलिए देही अभिमानी जरूर बनो। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 20/5/2025 है। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने, ये भूलो मत। हाँ, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने, अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि यही ज्ञान रत्न ही भविष्य में वो सच्चे रत्न बन जाएंगे और वो साथ चलेगी ये अविनाशी कमाई। तो बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने, अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदल कर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? दैवी संस्कार थे हमारे, फिर आसुरी बन गए, पर कैसे आसुरी बने वो भी बाबा बताते हैं, फिर दैवी कैसे बनेंगे वो भी बाबा बताते हैं। तो आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए, बदल सकते संस्कार, कई कहते हैं संस्कार तो बदल ही नहीं सकते, पर हमारे तो दैवी संस्कार थे वो बदल कर आसुरी बने, तो आसुरी संस्कार बदल कर दैवी संस्कार क्यों नहीं बन सकते? कहते कैसे बदलेंगे संस्कार, ये तो जन्म जात है। नहीं, जन्म जात नहीं है, हमारी तो असली संस्कार तो बहुत ऊंचे थे, तभी बाबा कहते ये तो द्वापर कलयुग के संस्कार है, तो उसको तो सहज बदल सकते हो। तो संस्कारों को बदलने के लिए क्या करना होगा? जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी बनते नहीं तो संस्कार भी बदलते नहीं। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। तो बाप क्यों आए हैं? ज्ञान रत्नों की कमाई कराने, फिर दूसरा दैवी संस्कारों, आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने लिए आए हैं। तो पुरुषार्थ करो, पहले पहला कदम कौन सा पुरुषार्थ का? मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है, पहले मैं देही आत्मा हूँ पीछे ये शरीर है। हम कई बार शिविर में तीन प्रश्न पूछते हैं, एक है मेरे अंदर आत्मा है, दूसरा है मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, और तीसरा है मैं आत्मा मेरे शरीर में हूँ। तो तीनों में से राइट कौन सा है? तो मैं आत्मा मेरे शरीर में हूँ, मेरी आत्मा मेरे में है का मतलब क्या हो गया? मैं शरीर हो गया और आत्मा मेरे अंदर है। लोग तो ऐसे ही कहते ना, मेरी आत्मा, फिर कहेंगे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, तो आप कोई तीसरी चीज हो क्या? क्योंकि शरीर भी मेरा आत्मा भी मेरी, तो आप क्या तीसरी चीज हो? फिर मैं आत्मा मेरे शरीर में हूँ, तो फिर सब सही जवाब देते हैं तीसरा नंबर। तो बाबा कहते हैं आप पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ पीछे ये शरीर है। गीत है, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खा के, हीरा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाएगी। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं। गीत में सावधानी है ना, तूने रात गवाई सो के, सावधानी देते रहते हैं कि ये समय खोने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही तो बाप आया हुआ है, कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी है उतनी कर सकते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई, ये है भविष्य के लिए। वो है भक्ति, ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है, कब शुरू होती है भक्ति, जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है, भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, और ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए और भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को देही यानी आत्मा समझना है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पहले आत्मा है पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार क्या हो गया, हम पहले आत्मा है फिर शरीर है, हम आत्मा मम शरीर। परंतु बाबा कहते क्या हो गया ड्रामा प्लान अनुसार, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, सब रॉन्ग हो गए हैं। हाँ कहेंगे भाई मेरे अंदर आत्मा है, मैं अपने को शरीर समझ लेते, तो सब मनुष्य रॉन्ग हो गए हैं। इसलिए क्या हो गया है, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देही हैं फिर देही है। तो बाप कहते हैं ये तो विनाशी है, देह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा के ज्ञान में दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं ना, शरीर तो विनाशी है आत्मा विनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है आत्मा अपरिवर्तनशील है, जलती नहीं कटती नहीं सूखती नहीं शरीर, ये सब कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं पहले हम तो उठते थे कि पहले हम देह है फिर देही है, तो बाप कहते ये तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो, संस्कार तो आत्मा में रहते हैं ना, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं, फिर आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। मनुष्य तो नहीं बना सकते ना आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार, तो बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचयिता बाप की ही है, उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं, और छोटा बच्चा जैसे ही बोलना शुरू किया सबसे पहले यही शब्द बोलता है, बाबा मम्मा मामा मापा पापा पा बाबा, तो यही अक्षर बोलता है। तो बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं, रचयिता तो बाप को ही कहेंगे, वो पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, पहले तो माँ को अडॉप्ट करते हैं फिर रचना रचते हैं उसके द्वारा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा हाँ ये भी माँ है, तो ये इस माँ द्वारा मैं नई रचना रचता हूँ, तो इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है, ब्रह्मा का नाम बाला है, कैसे बाला है, भागीरथ के रूप में, हाँ शिव की जटाओं से गंगा निकली, परंतु वो इतनी तेज भाव था जटाओं वो गंगा का, तो उसने शिव ने अपने में समा दी, लेकिन फिर भागीरथ ने कैसे उसको पकड़ा और फिर भारत की ओर भेजा, तो भाग्यशाली रथ। तो कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के यह ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहते इनका नाम बाला है, कहते भी हैं भागीरथ, मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, जो भागीरथ दिखाते हैं ना वो भी एक साधु ही दिखाते हैं भागीरथ, मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है, बैल आदि नहीं है, वो तो मनुष्य है, भागीरथ मनुष्य का तन है। तो बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तुम हमेशा कहो, क्या कहो हमेशा, कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। मधुबन में आते हो किसके पास आते हो, हाँ बाप दादा के पास, सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो जाएगा, बाबा के पास जाते हैं तो बाबा तो शिव बाबा निराकार है, तो केवल शिव बाबा के पास थोड़ी आते हो, ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों, तो इसलिए हमेशा क्या कहना चाहिए, हम बाप दादा के घर आते हैं। तो बाबा कहते हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं, सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो जाता है, निराकार बाप के पास तो सब जा सकते हैं। कब जा सकते हैं निराकार बाप के पास? सब, जब शरीर छोड़ेंगे परम धाम तो सब जाएंगे ना, तो निराकार बाप के पास ही जाएंगे सब। तो निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। केवल निराकार बाप के पास तो ऐसे कोई भी नहीं जा सकता है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, ये नॉलेज है भी बाप के पास, इसके और के पास नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है और बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। शिव बाबा में नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है, ज्ञान रत्न पानी को नहीं कहेंगे, ज्ञान पानी को नहीं कहेंगे। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, क्या कहते हैं वेदों में आता है, क्या कहते हैं कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। सब कह देते नीति नैति ईश्वर की का अंत पाना असंभव, हम नहीं पा सकते ईश्वर का अंत। तो आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वो तो एक रचयिता ही जाने। झाड़ का बाबा कहते हैं झाड़ का बीज रूप भी तो वही है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है, वो जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो, नॉलेज पाकर फिर प्रलब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहेगी। पालिया पद पालिया फिर तो नॉलेज की दरकार ही नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, यहाँ दरकार नहीं रहेगी इस ज्ञान की। इसका मतलब ये नहीं कि देवता अज्ञानी है, कि उनमें ये ज्ञान नहीं है। हम 25 से पावन कैसे बने, इसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज। हाँ, तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी है, नहीं, वो तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। पद प्राप्त कर लिया तो फिर वो ज्ञान पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, पद प्राप्त कर लिया। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई है, ये सब जानते हैं। ऐसे ही नहीं बस हम तो पैदा हो गए, बस ऐसे थोड़ी पैदा हो गए, पहले आत्मा शांति धाम से आई, गर्भ में प्रवेश किया तब पैदा हुए। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं शांति धाम से आई है, वहां आत्माएं शांत में रहती है, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। जब किसी चीज को पुराना कहते हैं तो जरूर वो कभी समय आया था जब वो नया था, ऐसे तो नहीं पुराना हो गया। तो बाबा कहते हैं जरूर नई दुनिया थी, तभी कहते ये पुरानी दुनिया है। वो कब थी, कौन राज्य करते थे उस नई दुनिया में, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है, बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता, उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है, परंतु आत्मा जानती है वही सुख शांति देगा, परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसीलिए फिर से बाप आकर परिचय देते हैं। तो आत्मा परमात्मा का परिचय वही देते हैं, क्योंकि भले पुकारती है लेकिन वो किसको पुकार रही है, क्यों पुकार रही है, कैसे देगा, बाबा के देव तो कुछ नहीं जानते, इसीलिए बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, आत्मा को ज्ञानी नहीं जो परम परमात्म अभिमानी बने। आत्मा को ज्ञानी नहीं है तो खुद का भी ज्ञान नहीं है तो परमात्म अभिमानी भी कैसे बनेगी। इसलिए आत्मा को ज्ञानी नहीं जो परमात्म अभिमानी बने, आत्म अभिमानी बनेंगे तब परमात्मा अभिमानी बनेंगे। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो तुम समझते हो बरोबर सूरत हमारी मनुष्य की थी और सीरत कैसी थी, बंदर जैसी थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेज फुल बन गए हैं। रचयिता और रचना का ज्ञान मिला है, तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, चढ़ता है ना नशा, हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, इसमें इनमें शिव बाबा में बेहद का ज्ञान है। तो तुम किसके पास भी जाओ, साधु संत महात्मा किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वो भी नहीं जानते। बहुत अनेक बातें सुना देंगे आत्मा के लिए, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा निर्लेप है, आत्मा ज्योति ज्योत में समा जाती है। अभी ये तो थोड़ी बाबा कहते आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा क्या क्या चीज है वो भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। याद करते हैं एक समझते हैं वो एक है, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सर्वव्यापी है तो कैसे दुख हरेगा, कैसे सुख देगा, कैसे उसको याद करेंगे, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उनका भी दोष नहीं है, बाबा किसी का भी दोष नहीं निकालते हैं। क्यों, ड्रामा है ना, ये ऐसा ही होना है। अगर ये इनको ये जान जाए सब, फिर तो स्वर्ग का स्वर्ग ही रहे, कोई नर्क बने ही नहीं, कोई दुखी हो ही नहीं। तो बाप कहते ड्रामा अनुसार इनों का भी कोई दोष नहीं है, माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कौड़ी को फिर कीड़ों को फिर गंध में ही सुख मिलता है। कलयुगी इंसान इतने बाबा कहते तुच्छ बन गए हैं, जैसे कीड़े होते ना कि कीड़े गंदगी में ही रहते हैं तो उनको तो वही पसंद आता है। उनको अगर कोई स्वच्छ स्थान पर रखो वो वापस जाएंगे, वो कीचड़ में ही चले जाएंगे। तो कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है, तो बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, अब दलदल का मिसाल बाबा क्यों देते हैं, मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे बेचारे। बाबा को भी तरस पड़ता है, ज्ञान का पता ही नहीं है तो दलदल में पड़े हैं, विकारों में पड़े हैं। ज्ञान का तो पता ही नहीं तो क्या करे, दुब्बन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। इतने फंसे पड़े हैं विकारों में, अगर उनको कहीं भी ना भाई ये विकार है इनको छोड़ो, तो कहेंगे ये कैसे छूटेगा, ये तो हमारे माई बाप है, यहाँ तक भी कह देते। तो दुब्बन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले भी आओ, हाँ समझो किसी को निकालते हैं और वो आधा पौना तक ले भी जाओ, फिर भी हाथ छुड़ा करके गिर पड़ते हैं, फिर हाथ छुड़ा करके गिर पड़ते हैं कई बच्चे। फिर दूसरा, एक तो चलो उसको उठाया, आधा पौना बाहर निकला भी, फिर हाथ छुड़ा करके फिर गिर पड़ता। कई फिर बाबा कहते ऐसे हैं जो औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया की थप्पड़ खा लेते हैं, वो खुद भी फंस जाते हैं। जैसे होता है ना, कई होते हैं ना भाई कोई डूब रहा है मैं जाऊं उसको बचाऊं, तो वो उसको बचाने तो क्या खुद भी डूब जाता है। तो बाबा कहते हैं दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं तो कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं। क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। एक बार जगदीश भाई की क्लास में आता है कोई सेंटर की बात जगदीश भाई ने सुनाई थी कि वहां पर कोई एक भाई था बहुत परेशान करता था सेंटर पर, तो दूसरे ने कहा मैं इसको सबक सिखाऊंगा। तो क्या हुआ, वो बाहर गए और खूब एक दो में आपस में लड़ने लगे और सबक क्या सिखाऊंगा। दूसरे आए और उनको चलो छुड़ाया, सेंटर पर नहीं बाहर जाके छुड़ाया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि सब कहने लगे ये आदमी भी तो कितना गुस्से वाला है, वो भी है। तो वो कितना उनको बुरा भला लोग कहने लगे जो खुद भी निकल गया, उसको क्या निकाला खुद भी निकल गया। तो ऐसे भी कई हैं, तो खुद ही दलदल में फंस गए दूसरों को निकालते निकालते। तो बाबा कहते हैं दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं, उनको अपना पाप ही अंदर में खाता है, क्योंकि उसने उसको मारा ये सब किया पता नहीं क्या क्या, तो फिर अंदर में जो पाप उसने किया इतना दुख दिया जो कुछ, तो उससे वो पाप उसका उनके मन में खाता था। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वो है बाहुबल से लड़ने वाले हिंसक सेनाएं, और तुम हो अहिंसक सेना। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से, हिंसा से कोई राज्य नहीं ले सकता है, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा भी दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, वो ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। हमारा है ज्ञान बल की लड़ाई, माया से लड़ाई, वो तो हिंसक युद्ध करते हैं, तो ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते, अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। हाँ, सच्ची अहिंसा किसको कहेंगे, बाबा वो सिखाते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानते। पतित पावन को बुलाते हैं, दुख हरता सुख करता आओ बुलाते हैं, पर कैसे पावन बनाएगा कैसे दुख हर कर सुख देगा, बाबा कहते वो तो जानते नहीं, ये कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है जो मनुष्य को भगवान कह दिया, तो क्या श्री कृष्ण भी आकर के ऐसे दुख हरेगा पतितों को पावन बनाएगा, वो तो नहीं करेगा। तो इसीलिए देहधारी को ही भगवान मान लिया। शास्त्र मनुष्य नहीं बनाई है, मनुष्य ही पढ़ते हैं, देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं है। देवताओं को कभी देखा शास्त्र पढ़ते हुए, उनको तो दरकार ही नहीं है, वहां कोई शास्त्र होते नहीं। तो ज्ञान भक्ति और पीछे है वैराग्य। अब किसका वैराग्य, ज्ञान भक्ति उसके बाद है वैराग्य, तो किसका वैराग्य, तीन बातें बाबा ने कही। एक है भक्ति का वैराग्य, दूसरा है पुरानी दुनिया का वैराग्य, और तीसरा है पुराने शरीर का वैराग्य। तो पुराना शरीर पुरानी दुनिया, तो उसमें भक्ति भी आ गई, तो भक्ति का भी सबका वैराग्य। तो बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, इस सारी छी दुनिया से ही वैराग्य। कितनी गहराई है इस वैराग्य में, देश से पदार्थों से व्यक्तियों से सारी इस छी दुनिया से भक्ति से भी, तो सारी छी दुनिया से वैराग्य। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई को इस जन्म के लिए नहीं है, इस जन्म के लिए पढ़ाई नहीं है। हमारे वैल्यू एजुकेशन में तो हम लोग डिप्लोमा देते हैं और डिग्री देते हैं, परंतु वो चलो इस दुनिया के लिए कहेंगे भाई, कहते क्यों ये वैल्यू एजुकेशन पढ़ना है, जरूरत क्या है। तो फिर हमको उनको बताते हैं कि अगर आपको कोई नौकरी चाहिए, कोई जॉब चाहिए, अगर आपके पास ये डिग्री होगी ना वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की, तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, आपको लोग पसंद करेंगे कि भाई ये गुणवान व्यक्ति है, ये कोई ऐसी गलत काम नहीं करेगा, तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। तो इसीलिए बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, तो ये बहुत कुछ, ये हमारा डिग्री कोर्स चल रहा है, कितनी यूनिवर्सिटीज में एमओयू किया हुआ है। तो इसीलिए हर एक चाहता है कि ये स्टूडेंट्स को शिक्षा मिले, लेकिन फिर इससे क्या होता है, वो आत्मा तो संस्कार तो भर लेती है ना, फिर संस्कार भरती है, फिर अविनाशी कमाई हो जाती है भविष्य के लिए। तो बाबा कहते हैं, और जो पढ़ाई होती है वो होती है, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, ये पढ़ाई को इस जन्म के लिए नहीं है। अगर जो भी पढ़ाई है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलेगी, मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है, सोचो तो सही, बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए प्रारब्ध तुमको कितनी बड़ी मिल जाती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वो तो सदैव ही श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं कभी श्रेष्ठ से भ्रष्ट भी बनता है, सदैव ही श्रेष्ठ है बाप, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। तो बाप कहते हैं, मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है, पहचाना है ना ब्रह्मा बाबा को। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, है ना। आम के देखो कितने फूल लगते, कितने फूल, अगर सारे फूल में से आम निकले तो ये झाड़ ही सारा नीचे चला जाए, इसलिए फिर हवा लगती है, इतने फिर सब फूल गिरते रहते हैं, तो थोड़े से बच जाते हैं वही फिर फल बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं फिर माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। चलो फल लग भी गया, फिर कितनी संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि चिड़िया आती है, बंदर आते हैं, क्या क्या आता है। अभी इतनी लीची लगी हुई है, देखो बाबा की झोपड़ी के सामने सब आते देखते हो, लीची लीची लीची, हाँ होता अंदर में, तो इसको ढक दिया भाई तुम नजर न लग जाए। तो बाबा कहते हैं, कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते, बच्चे भी ऐसे ही, माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल और इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो ना, योग योग नहीं कहो, याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद, तो चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। वहां जो हठ योग करते हो तो एक जगह बैठ कर करना होता है ना, यहाँ तो चलते फिरते भी हम करते हैं। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, बाप कितना सहज बतलाते हैं, याद कैसे सहज बतलाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, याद आता है, आधा कल्प के हम आशिक है, भगवान को हर जन्म में याद किया है ना, बताते ना कि देहधारियों से जो संबंध है वो तो एक जन्म के ही है, लेकिन परमात्मा के साथ जो आत्मा का संबंध है वो तो अविनाशी है, हर जन्म में उसको याद किया, अब उसको भूल जाते हैं, और जो देहधारी संबंध जो केवल एक जन्म के उनको ही याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, आत्मा को तो कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं, आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, न आत्मा विनाश होने वाली है और न आत्मा नहीं विनाश होने वाली है, न उनका पार्ट विनाश हो सकता। आत्मा ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु भी विनाश नहीं हो गया, और जो उसमें पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, वो भी नहीं विनाश होगा। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं, शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। वहां थोड़ी ऐसे कहते शास्त्रों में कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, बस आत्मा निकली, बुदबुदा निकली, विलीन हो गई। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाशकाली प्रीत बुद्धि और विनाश और विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए कहा जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि, ये बाबा की याद की बात है। तो प्रीत बुद्धि है तो बाबा की याद ठहरी, और विपरीत बुद्धि है तो बाबा की याद भूली। तो ये प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि, प्रीत भी फिर अव्यभिचारी चाहिए। प्रीत तो ठीक है, लेकिन अनेकों से प्रीत रखी, बाबा से भी प्रीत रखी, क्या बड़ी बात है। प्रीत तो अव्यभिचारी चाहिए, केवल एक सही प्रीत चाहिए। तो अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं, ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते क्या होगा। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। क्यों लड़ाई लग के फिर बंद हो जाती है, क्योंकि बच्चे अभी तैयार नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी, उतना क्या होगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, सारा साल तो पढ़ना होता है, इम्तिहान जो मेन होता है वो तो एक ही बार होता है, एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा जो सबकी प्रीत बुद्धि हो जाए और फिर विनाश हो। तो बाबा कहते हैं, जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां लगती रहती है। विलायत वाले भी समझते हैं, अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, बनाते जा रहे हैं। ये ड्रामा की नींद है ना, बॉम्ब्स बनाते जाना, अपने रिफाइंड सब कुछ करते जाना, ये बाबा कहते ड्रामा की नींद है ना। अपने ही साइंस बल से अपने कुल की मौत लाते हैं, कितनी बड़ी बात, अपने ही साइंस बल से अपने कुल की मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं, पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। हाँ, बाबा सत्युग में ले चलो, बाबा घर ले चलो, तो शरीरों को थोड़ी साथ में ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते। कालों का काल है, महाकाल है, तो सबको शरीरों से छुड़ा करके ले जाएंगे ना, शरीरों सहित थोड़ी आत्माओं को ले जाएंगे। तो महाकालों का काल महाकाल है, अब ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है, निरुआ मौत मलूक का शिकार, ये कहते विनाश, वो कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे देखो भगवान क्या कहते, इसलिए कहते नर चाहत कुछ और एक ही और भाई। मनुष्य चाहता कुछ और है, पर मनुष्य के मन में एक और ईश्वर के मन में दूजा। तो बाबा कहते हैं, वो कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति की स्थापना कैसे होगी? विनाश चाहिए तभी तो सुख शांति की स्थापना होगी ना। विनाश न हो और सुख शांति आ जाए ऐसे कैसे होगा? इसलिए चक्र पर पूरा समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ। स्वर्ग के गेट, गेटवे टू हेवन, इस पर भी एक पुस्तक छपाओ। गेटवे टू शांति धाम सुख धाम, खाली स्वर्ग नहीं शांति धाम भी, घर जाने का भी तो गेट अभी खुलना है ना। गेटवे टू शांति धाम सुख धाम, इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे तो समझाना पड़े इसका अर्थ क्या है। वो सहज परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में भी कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कैसे होते दिल शिकस्त? इतनी सेवा करते, इतनी सेवा करते, इतने आते हैं लोग समझने के लिए, फिर सेंटर पर 100 आ गए, फिर धीरे धीरे छटते जाते, 50 हो गए, 20 हो गए, 10 हो गए, आखिर एक जाकर के बचता है। तो कई कहते हैं इतनी हमने मेहनत की, खाली एक ही बाबा का बच्चा बना, लेकिन वो एक भी 1.25 लाख के बराबर हो सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रजा तो बनती है ना, जो ज्ञान सुनेंगे वो प्रजा में तो आएंगे ना। 33 करोड़ देवी देवताएं कहते हैं तो 33 करोड़ तो चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत भी उनके कान में गया। बाबा कहते हैं वो बाबा कहा तो बाबा कहते हैं सत्युग में या त्रेता में जरूर आएगा। तो प्रजा तो चाहिए ना, तो प्रजा बन गई, वो प्रजा तो बनती है ना। मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी फिर अव्यभिचारी चाहिए। हाँ, याद तो किया पर कितनी मिक्सचर थी उस याद में, और कितनों की भी याद साथ में थी। तो याद तो अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, मेहनत बिगड़ थोड़ी कोई विश्व का मालिक बन सकते हैं। मासी का घर बाबा कहते नहीं है, मेहनत बिगड़ थोड़ी कोई विश्व का मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस समाचार आते हैं, क्या क्या आते हैं, किसने लिखा होगा बाबा को, बाबा आज विद्वत मंडली को समझाया। कोई विद्वानों की मंडली, विद्वत मंडली वो आए होंगे तो उनको समझाया, आज ये किया, आज वो सेवा की, आज वो सेवा की। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। हमेशा बाबा कहते जब भी ऐसे सेवा करो माताओं को जरूर साथ में ले जाओ, बहनों को जरूर साथ में ले जाओ, केवल भाई नहीं जाए, क्योंकि बहनों का अपना प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमारे कई वरिष्ठ भाई यही सोचते हैं कि बहन जरूर चले, खाली भाई जाए उससे नहीं सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर, मधुबन है चैतन्य दिल वाला मंदिर, क्योंकि जड़ दिल वाला मंदिर भी यही है माउंट में। तुम चैतन्य में बन जाएंगे फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि तो रहेंगे नहीं। तुम चैतन्य में हो तो चैतन्य में ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हाँ, ऐसे मंदिर तो होंगे नहीं सतयुग में जो ऊपर में खाली स्वर्ग और नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम चैतन्य में देवताएं बन जाएंगे तो भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा क्यों आए हैं, कितनी लंबी लिस्ट बन सकती है क्यों आए, कितना भगवान कार्य करते हैं, और मनुष्य समझ से वो तो कुछ भी नहीं करता है ना, तो कितना भगवान का कार्य ऊंचे से ऊंचा है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अब कार्यों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अब कार्यों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अब कार्यों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। कैसे परिवर्तन करेंगे? रहम की वृत्ति से शुभ भावना से परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, है रेत रेगिस्तान, लेकिन उस रेत में भी कैसे खेती पैदा कर देते हैं, उसको आर्टिफिशियल तरीके से कैसे वो बगीचा बना देते हैं। आप दुबई में जाएंगे, दुबई है पूरी रेत है सब कुछ, ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज सब रेत ही रेत है, सब वो पूरा रेगिस्तान, लेकिन कितनी हरियाली है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली तरीके से करते हैं। तो जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धर्मी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। कैसे सदा हर्षित रहेंगे? ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचते ऊंच स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है स्वयं पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। हमारी पर्सनालिटी है संपूर्ण पवित्रता स्वप्न और संकल्प में भी। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी। तो अपनी इस पर्सनालिटी में सदैव स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। सेवा स्वतः होगी इस पर्सनालिटी में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज तो बट्ठी का दिन है, आज तो बट्ठी का दिन है। बट्ठी में हमारी मुकेश बहन आ गई है। कहाँ है मुकेश बहन? मुकेश बहन पीछे बैठी है। आ गया हो? आ गया हो मुकेश बहन? आ गया हो? आ गया मुकेश बहन चंडीगढ़। नाम ही है मुकेश बहन। कोई सोचा भाई का नाम है लेकिन बहन का नाम है। हाथ दिलाओ। बहुत इनकी बड़ी पार्टी आ रही है चंडीगढ़ से। आ गए हैं? जो आ गए आपकी पार्टी वाले हाथ उठाए, जो चंडीगढ़ से आए हैं। अच्छा, थोड़े आए हैं और भी आएंगे। और दूसरा फिर है भंडारा, महाराष्ट्र भंडारा। भंडारा से भाई बहने आ रहे हैं। आज शाम से भट्टी शुरू हो रही है। अब देखो अभिनी बहन हमारे बीच में है और बहुत कुछ, अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ 50 साल का मनाया था सेवा, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए 50 साल हुए। जयंती बहन खास गए थे उसमें, तो हमारे लिए हर्ष की बात है कि डॉक्टर बी के बिन्नी को ऑस्ट्रेलिया सिडनी पार्लियामेंट में भारत सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाई ताली तो बजाओ। हम साथ ही ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर माउंट आबू से रिप्रेजेंट करते हुए राज योगा स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज की रिसर्च व शिक्षण की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी लिट की मानद उपाधि भी फ्रांस सोरबोन द्वारा प्राप्त की गई। तो वहां से भी उनको ये डी लिट माना डॉक्टरेट की डिग्री ऑनररी मिली है। तो भाई दिखाओ, हाँ भाई दिखा, अब दिखाओ, हाँ ये देखो बहुत अच्छा। हाँ ये डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की ये ऐसी उनको मिला है। तो ये भी एक तो पहले से डॉक्टरेट है और दूसरा तो डबल डॉक्टर बन गई। हाँ ट्रिपल डॉक्टर, ज्ञान की भी डॉक्टर। चलो बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है सुनाना है कुछ, दो मिनट।
ओम शांति। तो बाबा ने एक विशेष सेवा का अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा जो कारण बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, सबसे पहले सिडनी पार्लियामेंट में जो है वहां पर ग्लोबल एजुकेशन और बिजनेस समिट थी, तो वहां पर मुझे निमंत्रण था एज ए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। और बहुत सुंदर कार्यक्रम था, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट, साथ ही मिनिस्टर्स और उसमें फ्रांस के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हमें ओपनिंग मेडिटेशन प्रेयर कह के कहा, हमने वो भी वहां कंडक्ट किया बहनों के साथ में मिलकर। और मुझे उन्होंने एड्रेस करने के लिए कहा, तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि हम तो बाबा के घर से हेडक्वार्टर माउंट आबू से जाते हैं, मधुबन से जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ की ही ग्रीटिंग्स देते हैं। तो मैं हमेशा समझती हूँ कि ये कोई मुझे पर्सनल सम्मान नहीं मिला है, भारत सम्मान, लेकिन ये तो ब्रह्मा कुमारी इसका सम्मान है, हमारी संस्था का सम्मान है। और हमें जाकर सेवा करनी है, ये मेरा शुरू से लक्ष्य रहा कि जब भी विदेश जाऊंगी केवल केवल सेवा के लिए जाऊंगी। तो ऐसे ही बाबा अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो दूसरा, जैसे दीदी बता रहे थे, सबसे अच्छी बात ये रही कि दूसरी एक हमको अपॉर्चुनिटी मिली, निमंत्रण मिला कि आपको जो है 50 ईयर सेलिब्रेशन के लिए वहां रुकना है। तो मैं बाद में डिटेल में तो कभी सुनाऊंगी, लेकिन बहुत विशेष बातें थी कि 50 ईयर सेलिब्रेशंस में क्या नवीनता थी। वैसे तो सभी सेलिब्रेट करते हैं 50 ईयर्स, लेकिन वहां पर पहली बार जो पहला कार्यक्रम, जो कि ऑस्ट्रेलिया का आइकॉन है, आपको शायद पता होगा, ओपेरा हाउस, कमल की तरह उनकी पंखुड़ियां हैं, तो वो कम से कम 4,000 से 5,000 लोग बैठ सकते हैं। तो वहां पर जो अपना कार्यक्रम रहा और उसका नाम था, पूरी ही 50 ईयर सेलिब्रेशंस का जो थीम था वो ये था, द ग्रेट सदर्न लाइट्स, यानी कि सभी जो लाइट्स है, सदर्न लाइट्स जो आत्माएं हैं, और द वे फाइंडर्स। आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वहां पर लाइट हाउसेस बहुत हैं। तो ये बाबा के बच्चों ने कैसे 50 ईयर्स में इतने लोगों को रास्ता दिखाया, तो इसलिए द वे फाइंडर्स नाम रखा गया। तो जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो बहुत सुंदर दृश्य था, क्योंकि विदेश में तो आपको पता है कि अनुभूति ज्यादा कराते हैं। तो पीछे जो बहुत ऊंची स्क्रीन थी उसमें क्या थी, सदर्न लाइट्स थी, टिम टिम करती हुई पूरी स्क्रीन पर लाइट्स दिखाई गई थी और जो एंजल आते थे तो वो एंजल छोटे बच्चे जो थे उनकी विंग्स भी लाइट के थे, तो वो एक एक को रिसीव करते थे। तो विशेषता तो ये रही क्योंकि जयंती बहन वहां पर मुख्य अतिथि थे, तो खास वो कार्यक्रम की केवल विशेषता बताती हूँ कि पूरे ही प्रोग्राम के अंदर मैं समझती हूँ मैंने पहला ऐसा कार्यक्रम देखा। वैसे तो पैनलिस्ट थे, वो पैनल के रूप में रखा था प्रश्न उत्तर के रूप में, लेकिन जयंती बहन ने उस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि जो क्वेश्चन करने वाली थी वो घूम के फिर अनुभव मेडिटेशन का क्वेश्चन पूछती थी, तो उस कार्यक्रम के अंदर जयंती बहन ने लगभग 3 बार मेडिटेशन अनुभव कराया। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था जो बहुत सबको अच्छा लगा। और फिर वहां पर फेयर माउंट करके जो लूरा, मतलब सभी रिट्रीट सेंटर बहुत सुंदर बने हैं, तो विशेष रूप से जो हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी ने वहां 50 इयर्स पहले जो सेवाएं की उसका जो बीज बोया वो सारा वहां नजर आता था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सभी स्थानों पर हमने देखा बहुत डिसिप्लिन था जो दीदी की नेचर, जो उन्होंने पालना दी, तो जैसे मैंने देखा कि वहां पर इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, क्योंकि हम तो वहां जाते तो सुबह से लेकर अमृत वेला कराना है, मुरली भी पढ़नी है, फिर भाई बहनों से भी मिलना है, पूरा हमारा चाली भाई ने प्रोग्राम बनाया था, तो हमने देखा हम भी तैयार रहते थे कि कोई भी सेवा जो भी करनी है, तो डिसिप्लिन मतलब सुबह अमृत वेला से लेकर नाश्ते तक सब साइलेंस में रहते, कहीं हमने आवाज नहीं देखी, इतना रिस्पेक्ट से बात करना, कोई किसी को कमेंट नहीं करता है, ऐसा मैंने बहुत जीवन में देखा। लेकिन एक विशेष बात जो सेलिब्रेशंस की आपको बताना चाहूंगी कि क्योंकि हम लोग भारत और मधुबन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मेरे साथ मेरी लौकिक बहन नीना बहन भी थे, तो हम यहाँ से विशेष मोमेंटो बना के लेके गए थे 50 इयर्स का, तो हमने मधुबन की तरफ से उसको रिप्रेजेंट किया, सबको मधुबन की याद देते थे, शीलू बहन शशि बहन जितने भी विशेष हमारे सीनियर्स हैं उनकी याद देते रहे। फिर टाइम मिलेगा तो बताएंगे कि इतना सुंदर जो कार्यक्रम था उसमें एक एक डिपार्टमेंट को याद किया, उनकी दीदी को तो किया और जिसने झाड़ू पोछा लगाया उनको भी याद किया, उनको खड़ा किया कि किस किस ने बाबा के यज्ञ में, चाहे किचन है कोई भी विभाग, सबको उन्होंने बहुत बहुत सम्मान दिया। तो इस प्रकार सारी सेवाएं करते हुए वापस यहाँ पहुंच गए। सभी ने चाली भाई केन भाई जो पुराने भाई बहने थे सब लोग करीब 1000 भाई बहने वहां पहुंचे हुए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, याद दी। बहुत सारे बीके भाई बहने नहीं पहुंच पा रहे, ओल्ड एज हो गई है, ट्रेवल नहीं कर पा रहे, उन्होंने खास खास मधुबन निवासियों को याद दी है। ओम शांति।
योग कर, चलो 2 मिनट।